अं नमो भगवते वासुदेवाय अं नमो भगवते वासुदेवाय अं नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमो वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरम् श्रीमद्भागवतं स्कंद पांच अध्याय भी पांच है श्लोक नंबर 20 शीर्षक भगवान ऋषभदेव के द्वारा अपने पुत्रों का उपदेश तस्माद् भवन्ति हृदय निजातः सर्वे मया समम सनाभम अकृष्ट बुद्धा भरत भजदम सुश्रुणम तद्वरणम प्रजानाम तस्मा भवन्त हृदयंत जाता सर्वे मया समम सनाभम अक्लिष्ट बद्धाया भरतं भजदं सुश्रुणं तद्धरणं प्रजानां तस्मा भवन्त हृदयेन जातः सर्वे मया समं सनाभम् अक्लिष्ट बद्धा भरतं भजदं सुश्रुणं तद्भरणं प्रजानां शब्दार्थ तस्मात् अतः क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ भवंत हूँ तुम लोग हृदयेन मेरे हृदय से जाता उत्पन्न सर्वे सभी मयासम सर्वश्रेष्ठम अमम बह सनाभम भ्राता अक्लिष्ट बुद्ध्या भौतिक कड़ुषहीन आपकी बुद्धि से भरतम भारत की भजधम सेवा करने का प्रयत्न मात्र करो सुश्रोणम सेवा तत् बह भरणम प्रजानम नागरिकों को प्रजा प्रशासन अनुवाद मेरी प्रिय पुत्र तुम सभी मेरे हृदय से उत्पन्न हो जो समस्त दिव्य गुण का केंद्र हो अतः तुम्हें संसारी तथा ईर्ष्या मनुष्य के समान नहीं होना चाहिए तुम अपने सबसे बड़े भाई भरत को मानो क्योंकि वह भक्ति में श्रेष्ठ है यदि तुम लोग भरत की सेवा करोगे तो उनकी उसकी सेवा में मेरी सेवा सम्मिलित होंगे और तुम स्वयमेव प्रजा पर शासन करोगे। कृपया दोहराइए, मेरी प्रिय पुत्र हो, तुम सभी मेरे हृदय से उत्पन्न हो, जो समस्त दिव्य गुण का केंद्र है। अतः तुम्हें संसारी तथा ईर्ष्यालु मनुष्य को समान नहीं होना चाहिए। तुम अपने सबसे बड़े भाई भरत को मानो, क्योंकि वह भक्ति में श्रेष्ठ है। यदि तुम लोग भरत की सेवा करोगे तो उनकी सेवा में मेरा सेवा सम्मिलित होंगे और तुम स्वयं प्रजा पर शासन करोगे। तात्पर्य, इस श्लोक में हृदय शब्द हृदय के अतिरिक्त और अर्थात वक्षस्थल का भी सूचक है। हृदय वक्षस्थल में स्थित है, यद्यपि पुत्र तांत्रिक रूप से जननांग से उत्पन्न होता है किंतु वास्तव में वह हृदय से ही उत्पन्न माना जाता है। हृदय की स्थिति के अनुसार ये वीर्य शरीर का रूप धारण करता है। अतः जब किसी के पुत्र उत्पन्न होता है तब वैदिक प्रथा के अनुसार उनके हृदय गर्भधान संस्कार द्वारा शुद्ध किया जाना चाहिए। ऋषभ देव का हृदय तथा निष्कलुष एवं आध्यात्मिक था, अतः उसके हृदय से उत्पन्न सभी पुत्र आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। फिर भी ऋषभ देव ने सुझाया कि उनका सबसे ज्येष्ठ पुत्र प्रवर है, इसलिए अन्न को उनकी सेवा करनी चाहिए। भरत महाराज के सभी भाइयों का ऋषभ देव के द्वारा भरत की सेवा में संलग्न रहने की सलाह दी गई। यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य को परिवार के सदस्य में क्या आवश्यकता होना चाहिए, जबकि प्रारंभ में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को घर तथा परिवार में लिप्त नहीं होना चाहिए, किंतु साथ ही यह भी उपदेश है महियासाम पाद अभिरज सिकम, मनुष्य को महान अर्थात दिव्य दृष्टि से महान की सेवा करनी चाहिए। मत सेवाम द्वारा आहु विमुक्ति, महत अर्थात मान भक्ति सेवा करने से मुक्ति द्वार खुल जाता है। ऋषभ देव का परिवार कोई सामान्य परिवार न था। ऋषभ देव का ज्येष्ठ पुत्र भरत विशेष रूप से महान था, इसलिए अन्य पुत्र को उनकी सेवा करने का उपदेश दिया गया, यही उनका कर्तव्य था। परमेश्वर महाराज भरत को इस श्लोक का प्रमुख शासन बनाने के उपदेश दे रहे थे। यह परमेश्वर की असली योजना थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को इस श्लोक का चक्रवर्ती राजा बनाना चाहते हैं। वे कभी नहीं चाहते थे कि यह दुर्योधन को मिले, क्योंकि पिछले श्लोक में कहा जा चुका है कि भगवान ऋषभदेव का हृदयम जत्र धर्म था। भगवत गीता के धर्म का लक्षण बताया गया है, भगवान का समर्पण करो, धर्म की रक्षा है तो परित्राण साधना। मिसर का सदा अपने भक्तों को पृथ्वी पर शासक बनाने चाहते, तभी सबका कल्याण संभव है। जो ही असुर पृथ्वी का शासन संभालता है, अव्यवस्था फैल जाती है। इस समय यह जगत प्रजातांत्रिक प्राणी के प्रति प्रमुख है, किंतु सामान्य लोग रजोतम गुण से कलुषित है। फलत वे शासन चलाने के लिए उचित व्यक्ति नहीं चुन सकते। राष्ट्रपति का चुनाव मूर्ख शूद्रों के मतदान से होता है, अतः एक आर चुन शूद्र चुन लिया जाता है, फिर और सारी सरकार दूषित हो जाती है। यदि जनता भगवत गीता के नियम का कठोरता से पालन करे तो सदैव ईश्वर का भक्त ही चुना जाएगा, फिर तो स्वतः उत्तम शासन होगा। इसलिए ऋषभ देव ने महाराज भरत को इस श्लोक का सम्राट बनाए, यानी कि कहा भक्त की सेवा का अर्थ कि परमेश्वर की सेवा, क्योंकि भक्त सदा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। जब भक्त यह भार लेता है तो सरकार सदैव मैत्रीपूर्ण तथा कल्याणमय होती है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले संरूप कदा मध्यम ददाति सपदांतिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीजूत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्रीरूपम साग्र जातम सगण रघुनाथम नितम तम सजीवम साधितम सापदुतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादन सगण ललिता श्री विशाखानिताम नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानं पावनेव वैष्णवेव नमो नमः नमो अवतारय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरुदिशे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशाक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तब्द कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजवानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय निराज निवास नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमः वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सदितो गौड़दये पुष्पवंत चित्र संदौतमानुदौ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम हरे नाम कलम कौ नास्ते वो नास्ते वो नास्ते भगतेर धोत वृंदावन धायति परमानंद वर्धन कालिंदी जल करुण संगे मारुत सेवितम नाना पत्र लता वृद वृक्ष शनै समंडितम कुटी सूर्य समाभास विमुक्त संत तनगे तन मध्ये रत्न खचितम सन्न सिंहासनम प्रातःकालीन भगवत कक्ष में आप सभी भक्त लोग को हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन। ये बहुत ही बढ़िया प्रसंग है कि आप ऋषभ देव का जो उपदेश अपना पुत्रों का माध्यम से हम लोग सभी को ये उपदेश देते हैं। उनका 100 पुत्र थे और उसमें से भरत महाराज सर्वश्रेष्ठ व बड़े पुत्र थे। ये भक्ति जीवन में आप आगे सुनेंगे कि उन्होंने ऐसे कि जो हमारे भक्ति का जो सीढ़ी है आदो श्रद्धा से लेके साधु संग भजन क्रिया निष्ठा आसक्ति भाव तक व भाव स्तर को उन्होंने पदार्पण भी किए थे, लेकिन इन्हें भौतिक आसक्ति होने के कारण उनको फिर हिरण का शरीर में भी जाना पड़ा। लेकिन भक्ति इतना प्रभावशाली है कि उनका जाति स्मर व पहले जीवन का जो भक्ति का उनका याद भी रहा और एक आश्रम में भी रहे एवं शरीर छोड़ने का बाद फिर ब्राह्मण परिवार का भी परिवार में भी जन्म ग्रहण किए थे। उसमें जो जड़ भरत नाम से भी नामित थे, जटबद्ध रहते थे, किससे बोलते चलते नहीं थे और उसका प्रसंग रोगों का साथ जुड़ा हुआ है। और भी कई जगह में उल्लेख है कि ये भरत महाराज का नाम का अनुसार ही ये भारत का नाम पड़ा है। ऐसे कोई जगह में ऐसे उल्लेख भी है कि रामचंद्र भगवान का जो छोटे भाई भरत, उसका नाम से भी ये भारतवर्ष का भी कहा जाता है। जो भी हो, तो यहाँ पर ऋषभदेव ने अपना पुत्र को उन्होंने बतला रहा है, तुम सभी लोग ये बड़े भाई को अनुसरण करो। और यहाँ पर और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यद्यपि पुत्र तांत्रिक रूप से जनगण नांग से उत्पन्न होता है, ये तांत्रिक का मत है, लेकिन हमारे तृतीय स्कंद में कपिल एवं देवहूति का जो वार्तालाप होता, वहाँ पर कपिल देव ने बताते हैं कि दैवा कर्मणा दैव नेत्रण जतु गृह प्रपत्त है, दैवा लब्धेन जतु गृह प्रपत्त है, पूरी तरह से कथा कणा से जो श्लोक होता है, इसमें कहा जाता है कि ये पुत्र व मनुष्य व जीव ये दैव का विधान अनुसार क्या होता है ना, पुरुष एवं स्त्री का माध्यम से उत्पन्न होता है। दैवना कर्मणा दैवना कर्ण नेत्रण जतु गृह प्रपत्त है, लेकिन इसमें बताया जाता है कि तांत्रिक रूप से जननांग से उत्पन्न होता है। और प्रभुपाद ने यहाँ पर बता रहा है कि किंतु वास्तव में हृदय से ही उत्पन्न माना जाता है, नहीं तो ये जो पुत्र और मूत्र ये दोनों एक ही जगह से ही निकलते हैं। जो पुत्र पुत्र नामक नरक से पूर्वजों को उधार नहीं करते हैं तो उसको मूत्र का बराबर कहा जाता है। जैसे आप महाभारत एक बहुत बड़े प्रसंग आप जानते हैं कि महाराज सगर ने इनका दो पत्नियों से कोई 1000 पुत्र 60,000 पुत्र उत्पन्न किए थे, लेकिन उन्होंने एक राज से यज्ञ का भी आयोजन किए थे। राज से यज्ञ में जो अश्व को वीर पत्रिका बांध के छोड़ दिया जाता है, उसमें देखभाल करने के लिए भी कई सेना सामंत जाते हैं, लेकिन वो घोड़े जो हो पुनः लौट के आता है दिग्विजय करके, उसको फिर यज्ञ में और हवन किया जाता है, क्योंकि उनको पुनः और दिव्य शरीर धारण करके अपना यज्ञ का जो इच्छा अनुसार उसको रूप धारण कर स्वर्ग पधार जाते हैं। लेकिन बीच में क्या हुआ ना, इंद्रदेव ने देखे कि अभी बहुत बड़े यज्ञ चल रहा है, अश्वमेध यज्ञ, लेकिन ये अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाएगा ऐसे कहा जाता कि 100 अश्वमेध यज्ञ जो पूरा हो जाता है तो यज्ञकर्ता स्वर्ग का इंद्र बन जाता है। इसलिए रजोगुण व सत्वगुण प्रधान होने के नाते इंद्र ने हमेशा मृत में कई यज्ञ वगैरह कर रहा है क्या, उसको देखभाल करते हैं, और यज्ञ में विघ्न डाल के लिए उनका हर तरीका का प्लान बनाते रहते हैं। तो घोड़ा चोरी करके उन्होंने गंगा सागर जो मेला होता है हमारा अभी जनवरी 14 तारीख में जो मकर संक्रांति में होता है, वहाँ पर एक कपड़ी देव ने अभी भी तपस्या कर रहा है, तो वहाँ पर घोड़ा बांध दे के चल दिए। लेकिन यज्ञ जो वो संपन्न होने के लिए और व्यवस्था का जो समय आ चुका था, दिखे कि घोड़े नहीं है, तो उसी समय देखे पता लगाई दे कौन लिया घोड़ा, लेकिन उसे पता ही भी नहीं चला, लेकिन अपना जो 60,000 पुत्र थे सभी एक मत होकर, जैसे आप पहले भी सुने हैं कि जो प्रत्येताओं जो दुख का पिता श्रम मना जाते हैं, और कई बार ऐसे वर्णन आता है कि दक्ष प्रदापति ने ब्रह्मा जी का अंगुष्ठ से भी और जन्म लिए थे। जो भी हो वो 10 प्रचेताओं जैसे एकमत थे, और ये 60,000 पुत्र भी इसे एकमत थे। अब यहाँ पर ऋषभ प्रसंग में भी आप देखते हैं और प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि ऋषभ बता रहा है क्या ना, बड़े भाई को आप अनुसरण करो। तो ऐसे ही एकता होकर इस सगर का जो 60,000 पुत्र, ये सारा ब्रह्मांड ढूंढ लिए, स्वर्ग मर्त पाताल, लेकिन जो पाताल लोक को खुदाई कर लिए तो इस सागर जो बन गया कहा जाता है। एक तो प्रिय व्रत महाराज का रथ का निशाना से भी बना जाता है कहा जाता है, और सागर महाराज का जो पुत्र लोग जो खुदाई किए उससे भी सात समुद्र बन गया है। जो भी हो तो यहाँ पर कहा जाता है कि जद जद आसरथि श्रेष्ठ सत देवतरजन सजा प्रमाण करुते लुकनु सदवर्तते। यहाँ पर बता रहा जा रहा है कि श्रेष्ठ व्यक्ति और भरत महाराज ज्येष्ठ होने के नाते उनका सभी को अनुकरण करना करने के लिए बता रहा है, क्योंकि उन्होंने भक्ति में श्रेष्ठ थे, क्योंकि ये भक्ति से ही भगवान को हम प्राप्त कर सकता है। और ऋषभ देवी ये भी बता रहा है कि क्योंकि भक्ति में श्रेष्ठ है, यदि तुम लोग भरत की सेवा करोगे तो उसकी सेवा में मेरी सेवा सम्मिलित होंगे और तुम स्वयं प्रजा पर शासन करोगे, क्योंकि ऋषभदेव साधारण इंसान नहीं थे। अब 19 नंबर श्लोक में अब सुने हैं कि मेरा शरीर क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारणम कारणम। तो यहाँ पर ये प्रतिपादन करते हैं कि तुम वो कई भक्त का सेवा करते हैं, प्रपाद भी उसका श्लोक और कोट करते हैं महियासम पाद अभिरस सेकम, क्योंकि जो महान व्यक्ति का पाद अभिरस का जो अभिषेक है और उनका पदरज से हम जब अभिषेक नहीं हो रहा है तब तक हमारा भक्ति आगे बढ़ नहीं सकती। इसलिए हमारे एकादशी में एक है भजन में हम गाते हैं और सुनते भी कि सुध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। तो ये जो सुध भक्त का चरण का जो रेणु बा धोल से हम जब उस तक अभिषेक नहीं हो रहा है तब तक हमारे नवदा भक्ति का भी कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्णदास कविराज आचार्य का कहना है कि भक्त पद धुलियार भक्त पद जल भक्त भक्त से तीन साधन रे बल। ये साधन व भक्ति मार्ग में हमको और उन्नति व उन्नत कहने के लिए हमको क्या करना चाहिए ना, भक्त पद धुलियार भक्त पद जल। ये महान भक्त का ये चरण रेणु बा भक्त का जो धोल है हमको अभिषेक करना चाहिए, और क्या करना चाहिए ना, हाँ भक्त पद धुलियार भक्त पद जल, क्यों भक्त का जो महान भक्त का चरण धोत जो चरणामृत को हम पान नहीं करते में अभिषेक नहीं होता है तब वो भक्ति बढ़ेगा नहीं, और क्या भक्त भुक्त से तीन साधन रे बल। भक्त भुक्त मतलब भगवान जब ग्रहण करते हैं, जब भी भक्त भक्ति से और संप्रदान करते हैं बा निवेदन करते हैं तो भगवान उसको प्रसाद रूप में भक्त का सम्मुख में उसको आपस लौटा देते हैं। ये महाप्रसाद जब कोई भक्त सेवन करते बा ग्रहण करते हैं वो तो क्या होता है, महामहा होता है, वह उसको भक्त भुक्त से तीन साधना रे। इसलिए कई ही प्रसंग में आप सुने हैं, जैसे गजराज प्रसंग में हम सुनते हैं देवताओं का अनुसार 10,000 साल तक उन्होंने मगरमाच का साथ लड़ाई किया, वो स्थलचर है हाथी एवं जड़चर है मगरमच्छ, लेकिन यही नहीं उसमें है उसका ताकत बढ़ते जा रहा है जड़चर जीव होने के नाते, और जल में है और दूसरा क्या है ना, हाँ जो स्थलचर प्राणी है जो कि एक क्विंटल से भी ज़्यादा खान पान करने का आ रहा हिम्मत रखते हैं गजराज, उन्होंने आज इतना साल बिना खाए पिए ये मगरमच्छ के साथ लड़ाई चल रहा है। लेकिन पहले जन्म में पिछले जन्म में इन्होंने भक्ति किए थे महाराज इंद्र दुम्न रूम में, तो उसी भक्ति अंतिम समय को फिर याद आया। ये भक्ति एवं ये पुण्य में अंतर है, क्योंकि पुण्य हम जो भोग करते हैं स्वर्ग में कि वह इसी ही जगत में तो नष्ट हो जाती है, क्योंकि क्षीणे पुण्य मर्तलों का विसंति, लेकिन भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होता है। नेहा भी क्रमणा सत्य प्रत्युवाय न विद्यते स्वल्प मपस्य धर्मस्य तायते महत भयात। ये महत भय जब मृत्यु है मृत्यु मुख से ये भक्ति का प्रभाव से हमको अमृतत्व प्रदान किया जाता है। तो गजराज जो भगवान को पुष्प अर्पण करने का माध्यम से उन्होंने कोई स्तुतियां उन्हें अर्पित किए भगवान का नाम से, और हर भक्त को स्तव स्तुति अष्टकम वगैरह हर दिन उच्चारण व अध्ययन करना ही चाहिए, क्योंकि ही हम ये भक्ति जीवन में जी इसका अभी अनुसरण करेंगे अनुसंधान करेंगे तो कहीं भी हमारे यदि कोई विपत्ति भी आ जाए तो ये भक्ति व ये सब सूत्र व स्तुतियाँ हमको ये महाविपत से रक्षा करेंगे। लेकिन आज ये मगरमच्छ ने और कोई सोड़ में व कान में कोई पूछ में उनको नहीं पकड़ा, इतना बड़ा शरीर है उसमें भी नहीं पकड़ा, क्योंकि मगरमच्छ को ये ज्ञान था कि ये बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए राधारमण महाराज बता रहे थे कि उनको कोई कान में सोंड में कि दांत में कि पूछ में नहीं पकड़ा, उनको कहाँ पकड़े थे? पैर में, क्योंकि ये महत का पद अभिरस पाद पद्म को हम शरण करण करने से ही भक्ति में हम अग्रगति कर सकते हैं। और महाजन का अभी कहना है क्या है, भजो हरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंधुरे। ए भव सिंधु भाई, संसार से हमको तरने के लिए ये तरीवा नौका क्या है ना, ये पद पथ प्रदर्शन नौका का जो कन्नरी गुरु महाराज भाई भगवान का जो शुद्ध भक्त है उनका चरण में समर्पित कर देना। यहाँ पर भगवत गीता का प्रभुपाद ने इसे में बताते हैं कि भगवान को समर्पण करो, जद करुषी जद नासी जद करुषी जदाध्यस तद करुष तदत्पण। जो भी आप करते हो जो भी भक्ति करते हो तुम क्या करना, वो मेरा को अर्पण कर देना। अरे अर्पण कैसे करेंगे हम, अरे कौन किए थे? कि हमारे यहाँ पर जो भातरुल बल के एक जगह है जो जग कितनी का जगम का स्थल है, उसमें ये प्रसंग आता है कि ये ब्राह्मण लोग सूत्रामणि यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग सुख भोगने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण अपना भक्त मंडली को लेके व सखा लोग का साथ ये गोचारण का लीला कर रहे थे, तो उन्होंने एक कर पुण्य एवं भक्ति का निष्ठा उन्होंने ये दिखाने के लिए अपना सखा लोग को भेज दिए। सखा लोग जाके ब्राह्मण लोग को बतलाए, क्योंकि एक कर्मकांडी जगह में उन्हें व्यस्त थे स्वाहा स्वाहा करने में, इतना व्यस्त थे कि उनका जो निवेदन था कि कृष्ण बलराम अभी गौरी चराते हुए आए हैं उनको भोग प्यास में व्यतीत है, को जो हो खाद्य सामग्री हम लोग को दे दीजिए बा प्रसाद दे दीजिए, कि उस समय तो जग में व्यस्त थे अब प्रसाद देंगे कहाँ से, और भोग भी नहीं लगा हुआ था उस समय, लेकिन सब मौजूद था छप्पन भोग, लेकिन उन्होंने इतना कर्मकांड व्यस्त थे कि ये सखालों का अनुमोदन उन्होंने कर्णपात नहीं किया, क्योंकि उनको वो स्वर्ग सुख भोगने के लिए आर जगह में बैठते थे। तो वहां से दुखी होकर ये ग्वाला सब वापस आए एवं किसी मणा को बतलाए कि कोई काम बना नहीं। तो भगवान जानते थे कि इन लोग का जो हृदय है अभी कठोर हो चुका है और ये यज्ञपति लोग को पास जाओ दोबारा। इसलिए कि सुखा लोग बोल रहे थे अरे अभी तो हम बेजीते होके आए, अभी फिर दोबारा जाना बेजीत होना अच्छा नहीं। लेकिन भगवान जानते थे कि माता का हृदय सरल है। यहाँ पर जो प्रपद में और भी एक महत्वपूर्ण बताए कि हृदय की स्थिति के अनुसार वीर्य शरीर का रूप धारण करता है। तो जो हृदय सरल होता है तो उसमें भजन करने में भी सुगमता होता है, क्योंकि महाजन का कहना है कि गुरार भजन करवे यदि सरल कर्म। माताओं का मरण सरल था, जब भी उन्होंने निवेदन कर दिए कि किसान बलराम को भोग लग रहा है, कुछ हो खान पान का व्यवस्था हो सकता है, सुनते ही सभी यज्ञ का जो सामग्री था वहां से लेकर चल पड़े। भक्ति ते जहारा पाइला गोविंदाचरण। और यहां पर जो वैदिक प्रथा के अनुसार उसकी हृदय के गर्भधान संस्कार द्वारा शुद्ध किया जाना चाहिए। जो वर्णाश्रम का जो व्यवस्था है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, जो कोई ब्रह्मचारी जो वो दूसरा आश्रम ग्रहण करते हैं और वैदिक विधान अनुसार तो माताओं और पिता को ये भी गर्भधान संस्कार के लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए। इसलिए हमारे प्रभुपाद ने कोई जगह में उसका उल्लेख किए हैं कि हमारे जो हो आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि ध्रुवा श्रुति, जो हमारा आहार शुद्ध हो जाता है तो हमारे क्या सत्य शुद्धि एवं हमारे जो विचार बुद्धि भी शुद्ध हो जाता है। इसीलिए ये विचार बुद्धि जो शुद्ध हो जाता है हमारे हृदय का अंदर जो मांस रक्त मजा रस एवं वीर्य वो भी शुद्ध होता है। इसीलिए एक गुरुत्वपूर्ण बात है कि गर्भधान संस्कार के लिए भी हमको पहले से भी हृदय को शुद्ध करके रखना चाहिए। हमारे प्रभुपाद ने बताया है कि गर्भधान संस्कार का पहले पति पत्नी को कम से कम 50-50 माला जब करना चाहिए एवं व्रत भी, और जैसे एकादशी हम व्रत करते हैं ऐसे ही नियमानुसार रहना चाहिए। क्योंकि जैसे पराशर ऋषि ने आज अष्टादश पुराण कौन रचना करेगा, वो भविष्य को ये भक्ति का प्रबंध का कौन आगे बढ़ाएगा, इसी बहाना से उन्होंने आ रहे थे। उसमें ये वो जो जेतु जुगारुण पुरुष थे, भूत वर्तमान भविष्य को जानकारी था उनको, तो उनका ये मन में आया कि हम कई आर औरत से हम यदि गर्भधान संस्कार करेंगे ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उसी समय ये जो गर्भधान संस्कार का एक मुहूर्त भी होता है तो वो मुहूर्त उसी समय आ चुका था। इसलिए पराशर जी ने जो कि दास राजा का राज्य में एक कैवर्तवा केवट रहता था, एक केवट का पास एक बेटियां था जिसका नाम बाद में सत्यवती हुआ। तो उस समय कोई साबालक साबालिका होए नहीं थे, सियाना होए नहीं थे, लेकिन आज देखिए दैव का विधान ऐसे था कि उन्होंने उसी दिन अपना ख्या घाट में बा नौका चलाने के लिए कैवर्त ने गया नहीं था, अपना बेटी को उसी दिन भेज दिया था। तो आज जमुना का किनारे पराशर ऋषि पहुंच चुके हैं और गर्भाधान समय का भी अभी उपविष्ट हुआ है, क्योंकि ये महत समय में उन्होंने ये गर्भाधान संस्कार करना चाहते थे। लेकिन वहां पर कोई युवती स्त्री विद्यमान नहीं थे, लेकिन एक कैवर्त सुता बा केवट का जो कन्या ये नौका चलाने में व्यस्त थे, तो उन्होंने को फिर बुलाए तो बुलाए जो नौका दूसरा तरफ से इस तरफ लेके आया। जो पराशर ऋषि ने नौका में चढ़ गए, कुछ देर का बाद ही उन्होंने फिर वो बालिका से निवेदन किए गर्भदान संस्कार के लिए। तो उन्होंने जो सत्यवती ने उस समय तो सियाना हुए नहीं थे, तो उन्होंने बोले आप एक जुगाड़ पुरुष में महात्मा है और आप ऐसे गंदे बात क्यों करते हो, और जो भी हो लेकिन अभी तो मैं सियाना भी नहीं हूं, आज अभी मैं पुष्पवती भी नहीं हूं, क्योंकि मैं मछुआरा का बेटी हूं, आप मेरा शरीर से मछली का गंध भी बन निकल रहा है, आप इतना महान पुरुष है कि मेरा साथ अंग संग कैसे लाभ करेंगे। तो अपना योग शक्ति बल से ये पराशर ऋषि ने ये मछुआरा लड़की बा कैवर्त का जो बालिका को उन्होंने क्या किए ना युवती में परिणत कर दिए, और उनका सुगंध जुजन तक मतलब 8 माइल तक फैलते जा रहा था, इसलिए एक नाम उनका जुजन गंधा भी है। लेकिन उन्होंने जब जुजन गंधा अभी युवती हो चुके हैं, अभी दो किनारा में बहुत सारे यात्रियां भी हैं, तो उन्होंने बोले कि ऐसे समय में आप कैसे हमारे साथ गर्भदान संस्कार हम अंग संग आपको प्रदान कर सकते हैं। तो पराशर ऋषि ने अपना योगी शक्ति बल से कोहरा सृष्टि कर दिया, और भागवतम का वर्णन अनुसार यदि ब्रह्मा जब अपना पुत्री का प्रति धावित हुए थे उस समय अपना शरीर जब छोड़ दिए उसी समय भी एक कोहरा प्रसिद्ध हुआ था। जो भी हो कोहरा का प्रभाव से अंधकार हो गया, तो उन्होंने गर्भधान संस्कार कर दिया, क्योंकि उनका मन में ये शोध चेतना व वातावरण था। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद ने बताया कि जो वैदिक प्रथा के अनुसार इसको हृदय के गर्भधान संस्कार द्वारा शुद्ध किया जाना चाहिए। ऋषभ देव का हृदय सदा निष्कलुष या तो आध्यात्मिक था, ये आध्यात्मिक वातावरण व निष्कलुष हृदय से एक गर्भधान संस्कार होने से पुत्र पुत्री भगवत भक्ति में परिणत होते हैं। और यदि माता पिता भक्ति का आचरण नहीं करते हैं, हृदय शुद्ध नहीं है, तो उन्होंने यदि गर्भधान संस्कार कर देते हैं जैसे हिरण्यक हिरण्यकशिपु और रावण कुंभकर्ण का जैसे नालायक संतान उत्पन्न होंगे, अरे जगत को जगत का जो इंसान को पीड़ा प्रदान करेंगे, और जब पीड़ा प्रदान करेंगे भगवान क्या करेंगे ना। यहाँ पर और भी एक प्रभा श्लोक में बताते हैं, प्रैत्राणाय साधुनम बिना सहित दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जी। जो अब अधर्म का प्रभाव विस्तार लाभ करता है, धर्म का ग्लानि होता है, तो भगवान क्या करते हैं ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। तो धर्मों का ग्लानि जब भी होता है भगवान ये धर्म को सिखाने के लिए ये जगत में आविर्भूत होता है। तो यहाँ पर ऋषभ देवी भी अपना पुत्र का माध्यम से ये आरोप उपदेश देते हैं, क्या है ना, अन्य किस उसकी सेवा करनी चाहिए। भरत महाराज की सभी भाइयों का ऋषभ देव के द्वारा भक्त की सेवा संलग्न रहने से सलाह दी गई। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य को परिवार के सदस्य के में क्यों आसक्त होना चाहिए, जबकि प्रारंभ में उपदेश दिया गया कि मनुष्य घर तथा परिवार में लिप्त होना नहीं चाहिए। तो कुंती महारानी में भी तप का और अनुरोध किए थे भगवान से, हालांकि उनका पंच पुत्र भक्ति में बढ़े चढ़े थे, कोई साधारण नहीं थे। और पंच पांडव में आप देखते हैं यहाँ पर जैसे ऋषभ देव ने बतला रहा है कि आप सभी अब बड़ा भाई को अनुसरण करो, तो वहां भी पंच पांडव का जो और भी चोर जो चार भाई थे उन्होंने क्या क्या करते थे ना, हाँ महाराज युधिष्ठिर का ही अनुसरण किए, क्योंकि शास्त्र में यह भी प्रमाण मिलता है कि मनुष्य संहिता में कि पुत्र जो होता है ये पिता ही पुत्र रूप से जन्म ग्रहण करता है। तो यहां पर भगवान अपना पुत्र का माध्यम से ये सिखलाना चाहते हैं कि जब जब आश्रय श्रेष्ठ तत्देव तर जन। जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे महाराज भरत जैसे श्रेष्ठ भक्त, यदि जिसका भक्ति का अनुभव और पालन करेंगे तो और जो अन्य 99 जो भाई है उनका अनुसरण करेंगे। और ऐसे ही श्रेष्ठ भक्ति ये जगत में जो हो दिखाते हैं, जैसे आप देखते हैं कि कई प्रकार का फिल्म हीरो लोग और हीरोइन लोग अपना कुछ स्टाइल दिखाते हैं, जैसे एक कट था मिथुन कट बाल काटने के लिए, तो उसी ऐसे ही हमारे जगत में उसका भी अनुसरण वाला होते कि नहीं। वो माताएं जैसे आजकल जमाने में जैसे जीन पेंट और भी कितना स्कर्ट ब्लाउज क्या क्या लगाते हैं जो बनना आती थे, तो ऐसे ही उन लोगों को मानते हैं कि यही श्रेष्ठ भक्ति है। और लेकिन यह शास्त्र अनुमोदन करता है कि भगवत गीता के नियम का कठोरता से पालन करने से सदैव ईश्वर का भक्त ही चुना जाएगा। और ये जगत में क्या एक शूद्र दूसरा को राजा बना देते हैं, इसलिए प्रभुपाद का जो नोबेल पुरस्कार में बताते हैं सभी गधा मिलके एक बड़े गधा को राजा बना दिए। तो बड़े गधा यदि हो गया और सारे गधा मिलके क्या करेंगे, गधा का रेंकना क्या था दूसरा को परेशान करने के लिए। क्योंकि ये जगत में ये भगवत गीता का नियमों का पालन करने का जो राजा नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज और जड़ भरत जी और अम्बरीश महाराज जैसे राजा बने, ये नवदा भक्ति का उन्होंने अनुसरण किए थे एवं उनका प्रजा लोक भी उसका अनुसरण कर क्या करते थे। इसे एकादशी महात्म्य बताया जाता है कि राजा लोग जब एकादशी पालन करते हैं तो सभी प्रजा भी पालन करते हैं। एक प्रसंग में आता है तो उसी राज्य में ऐसे कि पशु पक्षी जितना भी थे वो भी एकादशी पालन क्या करते थे। तो राजा का दामाद जो हुआ अपना ससुराल में आया था, तो एकादशी का पहले दिन आजकल जैसे इंटरनेट व्हाट्सअप पर फोन नंबर है ही नहीं जो दूसरा जगह हम फोन करके बता दे सकते क्या, न्यूज पत्रिका भी है वह न्यूज में हम पढ़ लेते हैं कि आप भेज सकते हैं, तो उसी जमाने में तो ऐसे था ही नहीं। तो कोई गांव का जो चौक जगह आता है उसमें क्या करते थे ना, डुगडुग बजाया करते थे। तो डुगडुग के जब आवाज सुनते ही सभी लोग इकट्ठा होते थे तो पूछते थे किसके लिए ये आवाज हो रहा है, तो उसी समय बता दिया जाता है कि क्या शुभ सूचना है। तो एकादशी का पहले दिन ये खबर मिल जाता था राज्य में, तो खबर में ये दिया गया कि काल आगामी काल एकादशी है, सबको एकादशी व्रत करना चाहिए। तो उनका जो दामाद व जमाई आया था उन्होंने सुना कि एकादशी में क्या होता है, उसका पत्नी को पूछा उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि हमारे राज्य में सभी लोग एकादशी करते हैं और एकादशी में अन्न व पंचशस्य ग्रहण करना वर्जन है। तो उन्होंने बोला मैं तो बिना खा के रह नहीं सकता, लेकिन उनका पत्नी बोला देखो तो हमारे यहाँ राज्य में आया है सभी लोग व्रत में आप प्रवीण यहाँ सभी लोग करते हैं, आप यदि नहीं करोगे तो हमारे विजित होगा अपमान होगा। तो उन्होंने क्या किए है ना, कहीं से भी कस्टमर उन्होंने भेज और व्रत किया, लेकिन ये व्रत का फल स्वरूप उनका जब शरीर छोड़ दिया फिर दूसरा जगह में उन्होंने बहुत बड़े आश्चर्य का अधिकारी बने। तो इसे इसलिए ये शास्त्र का सिद्धांत है कि हम जो श्रेष्ठ भक्ति आचरण करते हैं तो हमारे जो अनुसरणकर्ता बा और भी जो अनुगामी होते हैं उसको अनुसरण करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या किए ना, अपनी आचार्य धर्म जीवे रसिकाए, अपनी ना कोयले धर्म सिखाना ना जाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में आए और क्या सिखाए ना, वैराग्य विद्या निज भक्ति जुग सिखाम मैकम पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धि वसम अहम प्रवदे। ये वैराग्य कब होगा ना, जब हम भक्ति करते हैं। यार भक्ति जो भगवत भक्ति ये सभी का हृदय में विराजमान है, लेकिन उसको उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू न श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। हम ये नवधा भक्ति का जो पहले का अंग जो क्या है श्रवण, ये श्रवण यदि हम प्रामाणिक अधिकारी से हम श्रवण करेंगे तो हमारे क्या होगा ना भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात क्या है, एक कलिजुग के लिए ना नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमित स्मरण काल यथादृशी तब कृपा भगवान ममापी। यदि हाँ हम ये भगवान का भक्ति करने के लिए नाम कुछ कीर्तन करते कैसे करेंगे ना नामे रुचि हईले प्रेमे रे उदय प्रेमे ते हरिते पाए। इसे दुर्योधन ने 56 भोग तो लगा दिया, भगवान की भी निमंत्रण में इन्वाइट कर दिया, लेकिन उसका दम अहंकार था। इसीलिए दम अहंकार को भगवान उनका खंडन किए और विदुर का घर में जाके विदुरानी का हाथ से एक केला का और गोदा नहीं खाए के केला के छिलका खाए। इसलिए केवल भक्तिर बस चैतन्य विषय। इसलिए हमको ये उपदेश मिलता है, ये ऋषभदेव महाराज अपना पुत्र माध्यम से ये उपदेश देते हैं और हमारे रूप गोस्वामी उपदेश का क्या सार निकालते हैं ना श्री कृष्ण नाम का हमको क्या करना चाहिए ना कीर्तन करना चाहिए और गुण का कीर्तन करना चाहिए। सुनोते क्रमणा नियोजो, हमको धीरे धीरे आर क्रम अनुसार हमको नियोज करना चाहिए जिह्वा को भगवान का नाम रूप गुण में। और क्या करना चाहिए ना तिष्ठन ब्रजे जनानुरागी, ये ब्रज में तिष्ठन रहना चाहिए और ये ब्रज में जो शुद्ध भक्ति के उनका व उनका जो और परिकर है उनका अनुगामी होना चाहिए। और क्या करना चाहिए ना हमको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इति उपदेश सारम, ये हमारा उपदेश अमृत में रूप गोस्वामी बताते हैं। तो इसे है भगवान या ऋषभदेव का माध्यम से और ये शिक्षा हमको देते हैं। और भगवान और प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को इस श्लोका चक्रवर्ती राजा बनाना चाहते थे। वे कभी यहाँ नहीं चाहते कि वह दुर्योधन को मिले, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि युधिष्ठिर महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्योंकि एक बार एक प्रसंग में बता दिया कि युधिष्ठिर महाराज को भेज दिया गया था कोई बुरे आदमी है के लेके आओ, लेकिन क्योंकि खुद बुरे नहीं थे बा दूसरी से हृदय बा मन नहीं था, ये जगत में उन्होंने ढूंढ के आए कि कोई बुरे व्यक्ति मिला ही नहीं उनको। लेकिन दुर्योधन जो कड़ी का निधित्व करते थे उनको जो भेज दिया गया कोई अच्छा व्यक्ति उन्हें मिला नहीं। इसीलिए हमको ये हमारे हृदय शुद्ध है तो हमारे दर्शन में शुद्ध होगा। क्योंकि जो महत व्यक्ति होते हैं जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण पड़े, सांग और जंगम न देखे तार मूर्ति सर्वत्र हो तार इष्ट देव पूर्ति। और नहीं तो क्या हुआ प्रभुपाद एक जगह में कोटेशन लिख किए हैं कूट किए हैं कि सुजने गुण मिशंती दूसरों मिशंती पामरा, जो सजन व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं दूसरा का गुण ही दर्शन करते हैं, और जो मूड व पामर होते हैं वो दूसरा का बुराई देखते हैं। तो यहाँ पर ऋषभदेव ने देखे कि भरत महाराज जो कि सौ पुत्र में श्रेष्ठ हैं और दिव्य गुणावली से ये भूषित है, इसलिए अपना पुत्र लोग को बतलाए कि तुम लोग हमारे उपदेश का अनुसरण करो कि अपना बड़े भाई को ही अनुसरण करो। क्योंकि अनुसरण एवं अनुकरण दो होता है, जैसे शंकर भगवान ने जहर पी लिए जगत कल्याण के लिए, कोई उसका अनुकरण करे एक बूंद ले ले तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, लेकिन हमको अनुकरण नहीं करने चाहिए अनुसरण करना चाहिए। जो उपदेश दिए हैं तो उसको हमको ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर आगे आप ये ऋषभदेव भगवान अपना पुत्र का उपदेश का और सार गहरती वस्तु का हम ग्रहण करेंगे। हरे कृष्ण। कई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? श्रीमद् भागवतम की समवेद भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की।
Thank you.